Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी, इस स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की श्रृंखला, 13 दिवसीय यह श्रृंखला का आज चौथा दिवस, चतुर्थ श्लोक अभ्यास के लिए चौथा श्लोक। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीना मपि निकट भाजाम असुलभम चिरम याचे संभो शिव तव पदाम भोज भजनम स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटन हास्ये स्वचतुरः कथम राज्ञां प्रीतिर् भवति मयि कोऽहं पशुपते परं पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डो प्यणुरपि च धूमोऽग्निरचल पटो वा तन्तुर्वा परिहरतिं घोरशमनम् वृथा कण्ठक्षोभम् वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधी मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्र फणितौ करौ चाभ्यर्चयां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ तव ध्याने बुद्धिर् नयन युगलं मूर्ति विभवे परग्रंथान् कैर्वा परम शिव जाने परमत सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदः न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीना मपि निकट भाजाम् असुलभम् चिरं याते शम्भो शिव तव पदाम्भोज भजनम् सहस्रं वर्तन्ते।
आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शिवा, हे शंभो, सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदाह। क्षुद्र व्यक्तियों के लिए, क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत व्यक्ति हैं और मेरे दृष्टि में वे लोग भी क्षुद्र ही हैं। ये वाक्य पर ध्यान देना, क्षुद्र व्यक्तियों के लिए क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत से क्षुद्र व्यक्ति भी हैं, लेकिन न मनने सोपने वह मुझे उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया वो क्षुद्र फल की कामना स्वप्न में भी नहीं होती है। जागृत में होने की तो बातें छोड़ दो, तदनुसरणम तत्कृत फलम। फिर तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव पूछे शंकराचार्य जी से, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूं महाराज, हरि ब्रह्मादीनाम अपि निकट भाजाम असुलभम। आपकी चरण की सेवा करने का अवसर विष्णु और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता। इंद्र वरुण की तो बातें छोड़ दो और संसारियों की तो और बात छोड़ दो, जिसकी चरण सेवा करने का अवसर हरि ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं है, मैं तो उसी चरण की सेवा करना चाहता हूं। बस वो चरण है चिरम याते शंभो। हे शंभो, मैं तो यही चाहता हूं कि दीर्घ काल तक, कब तक? जब तक स्वरूप स्थिति न हो, चिरम संसार में मुझे यही दो चीज चाहिए। एक तो मेरा लक्ष्य है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति की तरह शिवम वेद शिवैव भवति, आपको जानने वाला आप ही हो जाए, आपकी और मेरी पृथक अस्तित्व न रहे रंच मात्र भी। और यदि आपके स्वरूप मोक्ष, स्वरूप उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारण से आपसे भिन्न रहना पड़ेगा, तो जब तक भिन्न रहूंगा तब तक मैं यही चाहता हूं कि आपके तव पदाम्बोज भजनम, नित्य निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। या तो आपसे अभिन्न हो जाऊं, आपसे भिन्न का मेरा अस्तित्व न रहे, जो वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, और यदि अलग रहता हूं तो हमेशा आपकी सेवा, चरण की सेवा करने की मेरी इच्छा है चिरम याते। इसके अलावा मेरी किसी और कोई इच्छा नहीं। अरे भाई, जब तक संसार में रहेगा, व्यवहार में तो सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तुझे जब तक शरीर रहेगा, प्राण रक्षा के लिए भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और उस भोजन की याचना भिक्षा तुझे करना हो करना पड़ेगा, और भिक्षा की याचना करने के लिए तो संसार में गली मोहल्लों में तुझे जाना ही पड़ेगा, और यदि किसी से कुछ चाहिए तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति भी करनी पड़ेगी। संसार में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं प्रहलाद का पौत्र, क्या नाम था प्रहलाद का पौत्र? बलि था, पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि, पौत्र, और हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र। कहते हैं कि वो उसने बड़ा भारी यज्ञ किया, क्योंकि तीनों लोग उसके अधीन था। अब विचार करो, तीनों लोग बलि के अधीन था तो शिव कहां रहे होंगे? तीनों लोग का वो राजा था तो शिव कहां रहे होंगे? तो शिव भी तो उसी के अधीन रहे कि नहीं? अरे भाई, शिव तीन लोक से परे हैं भाई, हाँ। शिव तीन लोक से परे होने के कारण बलि ने तो तीन लोक की शासन अपने हाथ में ले ली थी, तीन लोक का मालिक था। शिव तो तीन लोक से भी परे है ना, इसीलिए बलि के साम्राज्य के अंतर्गत अधीन में शिव नहीं है। ये बात अलग है कि शिव का, बलि का साम्राज्य भी शिव का ही है, लेकिन बलि केवल तीन लोक का साम्राज्य है, मालिक है, लेकिन भगवान शिव तो अनंत लोक का मालिक है। इसलिए शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। तब उन लोगों ने षड्यंत्र किया, हाँ, भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमारा राज्य जो है बलि ने कब्जा कर लिया, और तीनों लोग बलि ने कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि हमको रहने का कोई ठिकाना नहीं और असुरों के राज्य में रहना पड़ रहा है। उसके कहे अनुसार हमको अनुशासित होकर काम करना पड़ रहा है। इसलिए आप कृपा करो, हमें तीनों लोक की राज्य की आवश्यकता नहीं है। पांडवों ने कहा था ना, हमको पूरा हस्तिनापुर के सिंहासन नहीं चाहिए। क्या कहा था? हम पांच भाई हैं, छोटा हस्तिनापुर के एक कोने का पांच गांव दे दो, हम उसी में हम गुजारा कर लेंगे, पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन हमको नहीं चाहिए। दुर्योधन उस साम्राज्य का राज्य करता हो तो करे, हमको राज्य भोग की कोई आकांक्षा नहीं है। ये प्रस्ताव दुर्योधन के सामने गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हम उनको पांच गांव की बात छोड़ दो, एक सुई रखने बराबर की भी जगह नहीं देंगे। इसी तरह देवताओं ने विष्णु को कहा, महाराज तीनों लोक की हमें आवश्यकता नहीं है, वेद ने, शास्त्र ने, आप लोगों के अनुशासन ने हमारे लिए जिस भूमि की, जिस लोक की परिकल्पना की है, द्युलोक, हमको वही चाहिए। बस स्वर्ग हमको प्राप्त हो जाए, बाकी भूलोक और पाताल आदि सब जिसकी है वो भोगे, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको हमारा राज्य चाहिए। क्या करें महाराज? अब लड़ने जाते हैं तो बलि उसी का भक्त है, तो अपने भक्त से क्या लड़े? तो कहते हैं उसी समय वह यज्ञ कर रहा था, भगवान ने विचार किया कि जाते हैं, यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठा है तो यज्ञ की पूर्णता दान करने में ही है, तो हम ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे, कुछ मांगेंगे और देगा वो, कहेगा कि क्या चाहिए तुमको, तो हम मांग लेंगे और तुम्हारा राज्य हम तुमको दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो भगवान विष्णु ने नाटक किया, हम लोगों को पता ही है ना, आप लोगों के सामने किया है ना, हैं? सामने किया, हाँ, नाटक किया उन्होंने, बावन बन गए वो। उनका नाम बावन क्यों हुआ? कहते हैं उंगली से नापो तो केवल बावन उंगली, इतनी उनकी हाइट थी, कितना 52 उंगली, 4, 8, 52 हाइट, हाइट कितना हुआ होगा, हाँ इतने थे वो, छोटे से थे। तो वो चले गए और बलि ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण बालक तुम क्यों आए हो? बोले हमने सोचा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़े मालिक हो तीनों लोक की, और हम ब्राह्मण हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई निजी भूमि हो और जहां हम आसन बिछाएं और गायत्री का अनुष्ठान करें, क्योंकि दूसरे की भूमि में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो जमीन जिसकी है अनुष्ठान का आधा फल तो जमीन वाला ही ले जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान शुद्ध हो, पूर्ण हो, इसलिए हमको थोड़ा जमीन दे दो। बलि ने कहा कि कितनी चाहिए? नहीं नहीं हम बड़े संतोषी हैं, हम तो द्वापर युग के ब्राह्मण हैं, कलयुग के नहीं। कृष्ण किस युग के ब्राह्मण थे बलि के सामने? हैं द्वापर युग के ब्राह्मण थे ना, तो कृष्ण माने कृष्ण भगवान नारायण जो कहो, बलि तो द्वापर युग का था। तो हम ब्राह्मण द्वापर युग के ब्राह्मण है, कलयुग के नहीं है। बहुत थोड़े में संतोष करते हैं, हमको तीन पग जमीन दे दो। बोले और ज्यादा मांग? हमारा तो तीनों लोक का साम्राज्य है, तीन पग क्या मांगता है? गंगा जी के पास जाकर केवल तीन बूंद पानी लेना कोई समझदारी है क्या? भरो बाल्टी जितना भरना हो। भगवान ने कहा कि नहीं, लोभ पापस्य कारण, हमको उतना ही है। जितने संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, जितना कम हो उतना ही सुखी और जितना ज्यादा हो उतना ही दुखी। सांसारिक पदार्थों के बारे में ये बिल्कुल सत्य घटना है। सांसारिक पदार्थों का जितना ज्यादा संग्रह होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा, और सांसारिक पदार्थों का जितना कम प्रयोग होगा, उपयोग होगा, उतना ही आनंद, उतना ही सुख होगा। भगवान ने कहा कि हमको तो तीन पग हो गया काम, और क्या, हमको तो भजन करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है तीन पग ले लो। और भगवान ने अपने तीन पग से सब कुछ ले लिया और ले जाकर किसको दिया? देवताओं को दे दिया, ले वो तुम्हारा है, तुम ले लो महाराज आपके लिए। बोले हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि क्या था? वह तो क्षुद्र जीव है। राजा बलि हालांकि अन्य साधारण जीवों के दृष्टि से वो बड़ा महान हो सकता है, लेकिन भगवान और शिव के सामने राजा बलि तो एक क्षुद्र जीव है। और राजा बलि जो देगा वो सब क्षुद्र ही तो हैं। पृथ्वी और पृथ्वी लोक का जो भी वस्तु हैं वो सब क्षुद्र ही तो हैं, स्वर्ग स्वर्ग के पदार्थ। इसलिए तो उपनिषद ने कहा है यद्यथेह कर्मचीत लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचीत लोकक्षीयते। अपरोक्षानुभूति में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मल वैराग्य का लक्षण, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम अनित्य भोग वस्तुनि, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर्यंत सारे लोक लोकांतर के जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य वस्तु है, क्योंकि वह भोग्य है, भोक्ता के द्वारा भोग्य है। किसी भोक्ता के द्वारा जो भोग्य होगा वो भोग्य क्षुद्र ही होगा, अनित्य होगा। यथैव काकविष्टायाम, जैसे एक मनुष्य को एक तरफ रसपुरी रख दो और एक तरफ कौवे का विष्टा रख दो, तो पहले कौन खाएगा? कौवे का विष्टा खाएगा कि रसपुरी खाएगा? है, कौवे के विष्टा को देखना भी नहीं चाहेगा, खाएगा है। यथैव काकविष्टायाम, यह अपरोक्षानुभूति का श्लोक है। तद ही वैराग्यम तद ही निर्मलम, जब किसी को जब इस प्रकार की दृष्टि बनती है, ब्रह्मादि स्थावरांतम, जितनी भी भोग्य वस्तुएं ये सब अनित्य हैं, कैसे तो बोले यथैव काकविष्टायाम, वो कौवे के विष्टा के प्रति मनुष्यों की जो दृष्टि बनती है वैसे ही दृष्टि भोक्ता को इन पदार्थों में बन जाए तब वो निर्मल वैराग्य कहलाएगा, तभी वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहलाएगा, तब बलि एक क्षुद्र राजा है। ठीक है, हमने उस दिन प्रवचन में कहा था ना, विराट के सामने हम तो क्षुद्र हैं, कुछ भी नहीं है, भले ही हमारे शरीर के जीव कण रक्त कणों के जीवों के सामने हम विराट हैं, हमारे जो मुख में कफ निकलता है उसमें कितनी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं कि नहीं, उनके दृष्टि में तो हम विराट हैं कि नहीं, बोलो है? उनके लिए तो हमारा तो शरीर तो क्या, तीनों लोक हैं, 14 भुवन है, है? उन जीवों के लिए हमारा शरीर तो 14 भुवन है, वो 3 लोक 14 भुवन एक ब्रह्मांड है, उनके सामने हम भले ही महान हो लेकिन विराट के सामने तो हम क्षुद्र हैं कि नहीं। इसी तरह परमात्मा भगवान शिव के सामने तो जितने भी बलि हो चाहे कोई हो वो सब क्षुद्र जीव हैं, और वो जीव खुद ही क्षुद्र हैं, तो वो जिन राज्यों का जिन वैभव का भोग कर रहे हैं वो भी शिव जी के दृष्टि में तो क्षुद्र ही हैं, और शिव जी की दृष्टि में यदि क्षुद्र हैं तो असली शिव भक्त की दृष्टि में भी वे सब क्षुद्र ही हैं। शंकराचार्य कहते हैं इस संसार में सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगत में हजारों हैं विबुधा, बड़े समझदार हैं, बड़े दाता हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्षुद्र फलदा, तुच्छ फल देने के लिए तो हजारों हैं, सांसारिक भोग्य पदार्थ प्रदान करने वाले तो बहुत मिलते हैं, हाँ संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज मेरे सामने तो, मेरे लिए तो उन सब राजाओं के द्वारा दिया गया पदार्थ बिल्कुल तुच्छ है, उनके उन राजाओं को, उन दाताओं को और उनके दिए हुए पदार्थों को मैं तो स्वप्न में भी उसकी कामना नहीं करता। जागृत में, जागृत में कामना करने की तो कोई बात ही छोड़ दो। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणम तत्कृत फलम। न उनकी स्तुति करने जाऊंगा मैं, न उनके द्वारा दिए गए पदार्थ की आकांक्षा करूंगा। फिर तुम क्या चाहते हो? हरि ब्रह्मादीनाम, मैं तो वो चाहता हूं जो विष्णु और ब्रह्मा जो दुनिया में बड़े महान कहलाते हैं, लेकिन महान होने पर भी उनको भी आपकी चरण की सेवा उपलब्ध नहीं है, और मुझे पता है आपकी जो धर्म पत्नी पार्वती है ना, वो भी कभी कभी साड़ी की कामना हो तो आपके चरण की सेवा करती है। हंस लिया ना तुमने, कम से कम इतना तो हंसे हो ना, शायद हंसने का मौका और जगह न मिलता है, इतने तो हंसती हो ना तुम लोग। कभी कोई एक ज्वेलरी की आवश्यकता हो तो शिव की सेवा करने के लिए शायद नजदीक जाए। चिरम 2400 घंटा तो शायद पार्वती भी शिव सेवा नहीं करेगी, करेंगे है? नहीं करेंगे मुझे लगता है। और हरि ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, मैं पार्वती को हरि ब्रह्माओं को भी इन लोगों के लिए अति दुर्लभ आपके चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं, आपके चरण में बैठकर चरण की सेवा करना चाहता हूं, वो भी कोई एक बार या दो बार की बात नहीं, चिरम याते। चिरम याते का याचे का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी जीव भाव बनी रहेगी, जब तक, तब तक मैं आपकी चरण की सेवा करता रहूं। और जिस दिन जीव भाव मेरी छूट जाएगी, उस समय मुझे किसी की सेवा करनी नहीं पड़ेगी, न करानी पड़ेगी, न करनी पड़ेगी न करानी पड़ेगी। अच्छा भाई, शिव जी को अपनी चरण की सेवा करानी पड़ती है कि नहीं है? कभी कभी उनके टांग दुखते हैं कि नहीं? आप लोगों का दुखता है कि नहीं? जब टांग दुखता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि नहीं कोई आके टांग दबा दे है? होती है ना, जब दुखता है तो कोई काम ज्यादा करना पड़े, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़े है? तब मन में तो होता है, भले ही वो साधन उपलब्ध न हो, आपकी बहु आज्ञाकारी होगी तो बेटी जरा ये टांग दुख रहे हैं थोड़ा दबा देना तेल लगा के कहोगी, या कोई आज्ञाकारी सेवक होगा, नौकर होगा, कर्मचारी होंगे, बाई होगी, उसको कहेंगे आज तो बहुत दर्द हो रहा है जरा दबा दे है? लेकिन भगवान शिव के मन में कभी इच्छा होती होगी कि नहीं? अरे भगवान शिव के मन में कोई मेरी सेवा करे ये इच्छा नहीं होती है। फिर शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि मुझे आपकी निरंतर चरण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूं। इसका मतलब है कि भक्त भगवान की सेवा करे ये भगवान नहीं चाहता, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, क्योंकि सेवा से, भक्त की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। समझ गए कि नहीं? भक्तों की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, और भगवान यानी परमात्मा भक्तों से यह अपेक्षा रखता ही नहीं है कि भक्त मेरी सेवा करे, नहीं रखता है। फिर क्यों करते हैं सारे भक्त भगवान की सेवा है? क्योंकि ये कहा गया है भक्तों का ही हित होगा, भगवान की सेवा करके भक्तों का ही हित होने के कारण भगवान भी यह चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरी सेवा करेगा तो उसी का हित होगा, मेरा तो कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। आप तो काम से कहा स्प्रिया, उपनिषद ने कहा जो आप तो काम है उसकी क्या स्प्रिया होगी, परमात्मा तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, वो भक्तों की सेवा की अपेक्षा क्यों रखेगा? फिर क्यों बार बार कह रहे हैं परमात्मा कर्म करो और मुझे दो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, बार बार क्यों कहते हैं? परमात्मा को हमारे कर्मों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? परमात्मा खुद निकम्मा है क्या? कमा के खा नहीं सकता है क्या है? कमा के नहीं खा सकता है क्या? परमात्मा को क्यों ये कहना पड़ा कि खाने से पहले तो दी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, ये करके खाओ, ये क्यों करना पड़ रहा है उसको? इसीलिए कि उस अन्न में शुद्धि हो, उस अन्न से भगवान की तृप्ति नहीं होगी। तुम जो कटोरी में थोड़ा सा, छोटे से कटोरी में थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर भोग लगाओगे, तुलसी का पत्ता रख के, क्या वो पेट भर जाएगा उसका? कभी सोचा है? तुम्हें दूध पीना हो को शाम को तो पूरा गिलास चाहिए, फुल।